मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र नवम अध्याय प्रथम सूत्र। आश्रव का रुकना संवर है, आश्रव निरुद्ध संवर है। मिथ्यात्व गुण स्थान में मिथ्या दर्शन की प्रधानता से 16 कर्म प्रकृतियों का आश्रव होता है, और जब मिथ्यात्व का उदय नहीं रहता तब उनका संवर रहता है। कारण नहीं होता तो कार्य नहीं होता। मिथ्यात्व कारण था उन 16 प्रकृतियों के आश्रव का, मिथ्यात्व का उदय नहीं रहा तो फिर जो कार्य था 16 प्रकृतियों का आश्रव वो भी नहीं रहा, तो 16 प्रकृतियों का संवर हुआ। फिर अनंतानुबंधी कषाय, अनंतानुबंधी कषाय से 25 प्रकृतियों का आश्रव होता है। अनंतानुबंधी का जब उदय नहीं होगा तो फिर उनका संवर हो जाएगा। तो दूसरे गुणस्थान तक अनंतानुबंधी का उदय रहता है, पहले गुणस्थान तक मिथ्यात्व का उदय रहता है। तो दूसरे गुणस्थान से ऊपर नीचे के 16 और दूसरे गुणस्थान संबंधी 25 प्रकृतियों का आश्रव समाप्त हो जाता है। तो 16 और 25 41 कर्म प्रकृतियों का संवर रहता है तीसरे गुणस्थान में। फिर चौथे गुणस्थान में जो कषाय है उदय में, नीचे भी है वो उदय में, तो वो अप्रत्याख्यानावरण कषाय है, इसीलिए चौथा गुणस्थान है। अप्रत्याख्यान का अर्थ पांचवा गुणस्थान, तो उसका आवरण करने वाली कषाय अप्रत्याख्यानावरण है, तो वो जब तक उदय में रहेगी तो पांचवा गुणस्थान नहीं होगा। तो उस अप्रत्याख्यानावरण कषाय से 10 कर्मों का बंध होता है, कर्म प्रकृतियों का। अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, मनुष्यायु, मनुष्य गति, फिर मनुष्य गति प्रायोग्यानुपूर्वी, फिर औदारिक शरीर, औदारिक शरीर अंगोपांग, और वज्र वृषभ नाराज संगनन, इन 10 प्रकृतियों का बंध होता है, ये अपन ने पढ़ा था। तो इन 10 का चौथे गुणस्थान से ऊपर के जितने भी गुणस्थान हैं वहां संवर रहेगा। चौथे गुणस्थान तक के इनका आश्रव है, आश्रव निरोध संवर है। उस कर्म का उदय नहीं रहा तो उस कर्म से होने वाले आश्रव का निरोध हो गया, ऐसा है। फिर पंचम गुणस्थान में कौन सी प्रकृति है? प्रत्याख्यानावरण। प्रत्याख्यानावरण के उदय से अभी अप्रत्याख्यान गुणस्थान में है, यानी अप्रत्याख्यानावरण का क्षय उपशम हो गया, तो फिर अप्रत्याख्यान यानी देश संयम प्रकट हो गया। अप्रत्याख्यान का अर्थ होता है प्रत्याख्यान यानी त्याग, और अप्रत्याख्यान यानी अपूर्ण त्याग। तो जब तक सवस्त्र अवस्था है तब तक वो स्थिति रहती है अप्रत्याख्यानावरण कषाय के साथ, अप्रत्याख्यान के साथ। अप्रत्याख्यान आवरण तो चली गई, तो प्रत्याख्यानावरण कषाय से 4 कर्म का बंध होता है। कौन से 4? प्रत्याख्यानावरण क्रोध, प्रत्याख्यानावरण मान, प्रत्याख्यानावरण माया और प्रत्याख्यानावरण लोभ। तो जब इसका अभाव होता है, इसका उदय समाप्त हो जाता है, इसका उदय समाप्त होता है छठे गुणस्थान में, और छठा गुणस्थान मुनियों का गुणस्थान होता है। तो वहां जाने पर, मुनि होने पर, ये 4 कर्म भी बंद हो जाते हैं। कितना संवर हुआ मुनि अवस्था में, नहीं 41 + 10 + 4 55 प्रकृतियों का संवर होता है। लेकिन मुनि अवस्था में भी जब प्रमत्त गुण स्थान होता है तो 6 कर्म प्रकृतियों का आश्रय होता है। प्रमाद के कारण 6 कर्मों का आश्रय होता है। वो प्रमाद के कारण होने वाली 6 प्रकृतियां कौन सी हैं? असाता वेदनीय, अरति शोक, फिर अस्थिर, अशुभ और अयश कीर्ति। फिर ये भी बताया था कि अयश कीर्ति का बंध तो 6ठे गुणस्थान में होता है, आश्रव बंध। अब आश्रव बंध समझ लो एक साथ ही लगे हुए हैं, जहां आश्रव होगा वहां बंध तो होना ही है। तो 6ठे गुणस्थान में होता है उसका आश्रव, लेकिन उदय नहीं होता। उदय अयश कीर्ति का उदय जो होता है वो 4थे गुणस्थान तक के होता है, उसके ऊपर नहीं होता। अभी यहां पर संवर की बात चल रही है, इसलिए अभी उदय विच्छित्ति की चर्चा अलग होती है, यहां बंध विच्छित्ति की चर्चा है। संवर में बंध का विच्छेद होना उसकी चर्चा है। फिर एक खास बात ये कह दी कि देवायु जो बाकी थी उसका बंध 4थे गुणस्थान के ऊपर भी होता है, क्योंकि 4थे गुणस्थान तक के 3 आयु के बंध प्रत्यय थे, मतलब क्रम से। पहले गुणस्थान नरक आयु का बंध प्रत्यय मिथ्यात्व, दूसरे गुणस्थान में तिर्यग आयु का बंध प्रत्यय अनंतानुबंधी, चौथे गुणस्थान में मनुष्यायु का बंध प्रत्यय अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्यय का अर्थ कारण होता है। तो इन तीनों का उदय समाप्त हो गया, तो अब एक आयु बची थी उसका बंध अब ऊपर भी हो सकता है। लेकिन शुरू कहां होगा बंध? तो बोलते हैं प्रमाद में शुरू होगा, प्रमत्त गुणस्थान में शुरू होगा। देवायु का बंध जो मुनिराजों को होता है वो 6ठे गुणस्थान में ही प्रारंभ होता है, फिर अप्रमत्त तक चलता है। बंध प्रारंभ हुआ तो वो बंध की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन अब प्रक्रिया के बीच में साधु 7वें गुणस्थान में जा सकते हैं, तो वो प्रक्रिया चलती रहेगी और आयु का बंध हो जाएगा। तो 6ठे गुणस्थान के ऊपर किनका संवर होगा? 7वें गुणस्थान में कौन सी प्रकृति का संवर होगा? प्रमाद से बंधने वाली जो 6 प्रकृतियां थी वो प्रमाद के बिना नहीं बंधेगी, तो 6 का संवर होगा 7वें में। और पुरानी जो है 55, उसमें 6 और जोड़ लेना तो 61 प्रकृतियों का, 61 प्रकृतियों का संवर 7वें गुणस्थान में होता है। फिर कषाय एव आश्रवो यस्य कर्मणो न प्रमादादि तस्य तन्निरोधे निरासो वसेयः। फिर कषाय ही जिस कर्म का आश्रव है, प्रमादादिक जिसके आश्रव नहीं है, उस कर्म का कषाय के रुक जाने पर अभाव होगा ऐसा निश्चित कर लेना। सच कषाय, और वह कषाय प्रमादादि विरहितस, प्रमादादिक से रहित कषाय की बात चल रही है, वह तीव्र मंद तीव्र मध्यम जघन्य भावेन त्रिषु गुणस्थानेषु व्यवस्थितः। वो कषाय जो है तीव्र मध्यम और जघन्य रूप से 3 गुणस्थानों में व्यवस्थित है। कषाय जो है ना 3 गुणस्थानों में, प्रमाद 6ठे तक था, उसके बाद संजुलन कषाय है। तो बोले कि प्रमाद आदिक से रहित जो कषाय है वो 3 गुणस्थानों में तीव्र मध्यम और जघन्य रूप से अवस्थित है। कैसे है तो बता रहे हैं। 7वें गुणस्थान में जो संवर हो गया वो तो बता दिया, 6 प्रकृतियों का संवर हो गया क्योंकि प्रमाद का अभाव कर दिया उन्होंने। अब उसके ऊपर के जो गुणस्थान होते हैं वो तीन उत्तम संगनन वाले जीवों को ही प्राप्त होते हैं, वो इस पंचम काल में नहीं हो सकते। जिनका पंचम काल में जन्म हुआ है उनको नीचे के तीन संगनन होते हैं, तो उनको वो गुणस्थान प्राप्त नहीं हो सकते मुनि होने पर भी। तो बता रहे हैं कि तत्र अपूर्व कर्ण स्यादौ संखेय भागे, अपूर्व कर्ण के प्रारंभ में, आठवें गुणस्थान का नाम अपूर्व कर्ण है, उसके प्रारंभ में संखेय भागे द्वे कर्म प्रकृति निद्रा प्रचले बध्येते। अपूर्व कर्ण गुणस्थान के प्रारंभ में संख्यात भाग पर्यंत दो कर्म प्रकृतियां निद्रा और प्रचला, इनका आश्रय होता है और ये बंध को प्राप्त होती है। तत ऊर्ध्वम, उससे ऊपर उसी आठवें गुणस्थान में ये निद्रा प्रचला को बंधने वाला एक हिस्सा हो गया, उसके ऊपर संख्येय भागे संख्यात भाग में त्रिंशत प्रकृतयो, 30 प्रकृतियां बंधम उपयान्ति, बंध को प्राप्त होती हैं। 30 प्रकृतियों के नाम दिए बीच में, कौन सी 30 प्रकृतियां हैं? तो बोले देवगति, एक मिनट, हाँ देवगति, पंचेंद्रिय जाति, क्योंकि देवायु के बारे में बतला चुके थे ना कि देवायु छठे से बनना प्रारंभ होती है और सातवें तक के बनती है, अब यहां पर आठवें गुणस्थान की बात चल रही है। तो बोले देव गति का बंध होता है, पंचेंद्रिय जाति का बंध होता है, वैक्रियक आहारक तेजस कार्मण शरीर का बंध होता है, चार प्रकार के शरीर का नाम कर्म का बंध होता है। औदार्क शरीर नाम कर्म का बंध क्यों नहीं होता? क्योंकि उसका संवर हो चुका है, अब प्रत्याख्यानावरण प्रत्यय है ना उसका औदारिक शरीर का, तो यहां कैसे होगा संज्वलन में? ये बात है। फिर समचतुरस्र संस्थान, देखिए अपन संस्थान छूट गया था ना एक, बाकी तो सब कर्म हो गए थे, संस्थान रह गया था, बाकी सारे संस्थान आ चुके थे, एक संस्थान बचा था, उसका नाम है समचतुरस्र संस्थान। ये आठवें गुणस्थान में भी बंधता है, और वैक्रिक आहारक शरीर अंगोपांग, वैक्रिक शरीर अंगोपांग और आहारक शरीर अंगोपांग, इन कर्मों का भी बंध होता है आठवें गुणस्थान में। वर्ण गंध रस स्पर्श, वर्ण नाम कर्म, गंध नाम कर्म, रस नाम कर्म और स्पर्श नाम कर्म का भी बंध होता है, और किसका होता है? देवगति प्रायोज्ञानुपूर्व्य, देवगति प्रायोज्ञानुपूर्वी का भी आठवें गुणस्थान में बंध होता है, और अगुरु लघु, अगुरु लघु कर्म का भी बंध होता है, और उपघात परघात, उपघात और परघात कर्म का भी बंध होता है। ये कितनी अजीब बात है कि उपघात कर्म पाप प्रकृति है, अपन ने अतोन्यत पापम सूत्र की टीका में पढ़ा था, परघात कर्म पुण्य प्रकृति है और उपघात कर्म पाप प्रकृति है। उपघात कर्म से एक जीव अपन आत्महत्या कर सकता है और उसके अपने अंगोपांग उसके लिए भी नुकसान पहुंचा सकते हैं स्वयं को, वो उपघात नाम कर्म है, पाप प्रकृति है। तो उसका बंध आठवें गुणस्थान तक होता है, परघात, परघात का भी बंध आठवें गुणस्थान में होता है तक होता है। फिर उच्छ्वास नाम कर्म का भी बंध होता है, प्रशस्त विहायोगति, प्रशस्त विहायोगति का भी बंध होता है, त्रस बादर पर्याप्तक, त्रस नाम कर्म, बादर नाम कर्म, पर्याप्तक नाम कर्म, इन सब का बंध वहां पर होता है। फिर प्रत्येक शरीर, प्रत्येक शरीर नाम कर्म का भी बंध होता है, स्थिर शुभ सुभग, स्थिर नाम कर्म, शुभ नाम कर्म, सुभग नाम कर्म का भी बंध होता है, सुस्वर, सुस्वर नाम कर्म का भी बंध आठवें गुणस्थान तक होता है, आदेय, आदेय नाम कर्म का भी बंध होता है जिससे कांति प्राप्त होती है। निर्माण, निर्माण नाम कर्म का भी बंध होता है आठवें गुण स्थान में। और तीर्थकराख्य, तीर्थकराख्या बध्यन्ते, और तीर्थंकर नाम कर्म भी बंधन को प्राप्त होता है आठवें गुण स्थान के छठे भाग तक। तस्यैव चरम समये, और अष्टम गुण स्थान के अंतिम समय में, चरम समय का अर्थ लास्ट, चतस्र प्रकृतयो हास्य रति भय जुगुप्सा संज्ञा बंध मुपनाया मुपयांति। आठवें गुण स्थान के अंतिम समय में चार कर्म प्रकृतियां बंध को प्राप्त होती है, हास्य रति भय और जुगुप्सा। शोक और अरति का बंध तो छठे गुण स्थान तक था, प्रमाद प्रत्यय थी ना, याद करो अपन ने पढ़ा था ना, अरति शोक इनका, ये प्रमाद प्रत्यय प्रकृतियां थी, तो इनका बंध छठे गुण स्थान तक होता था, प्रमाद जहां जहां तक था। और उसके बाद यहां कह रहे हैं कि हास्य रति भय और जुगुप्सा, इनका बंध आठवें गुण स्थान के अंत तक होता है। ता एतास, ये वो प्रसिद्ध प्रकृतियां हैं, 30 प्रकृतियां, जो 30 और 4 और 2, ये 36 प्रकृतियां बताई है, जो तीव्र कषाय आश्रवास, आठवें गुण स्थान में संज्वलन का तीव्रोदय है, तो तीव्र कषाय इसके आश्रव है। तदभावात निर्दिष्टात भागाद ऊर्ध्वम संव्रियते, निर्दिष्ट जो भाग है आठवें गुण स्थान के, उसके ऊपर वो संवर को प्राप्त हो जाती है। तीन गुणस्थानों में उन्होंने ये भाग बताए हैं, प्रमाद आदि से रहित जो संज्वलन कषाय है उसमें तीव्र, मध्यम और जघन्य, ऐसे भेद उन्होंने तीन गुणस्थानों में बताए, आठवें, नौवें और दसवें। अब नवम गुणस्थान की बात आ रही है, इसको बस इतना ध्यान में रखना है कि आयु कर्म का जो आश्रव था वो सातवें तक था देवायु का, पर प्रारंभ जो हो रहा था आयु कर्म का आश्रव देवायु का, वो छठे में हो रहा था, और फिर सातवें के ऊपर आयु का आश्रव समाप्त हो गया। प्रमाद जनित छह प्रकृतियों का आश्रव छठे से ऊपर समाप्त हो गया, सातवें में समाप्त हो गया, और चूंकि छठे में आयु का बंध प्रारंभ हो सकता था और सातवें तक चल सकता था, तो सातवें तक आयु का हिसाब पूरा हो जाता है देवायु का। और उसके बाद आठवें गुण स्थान में उन्होंने ये अलग अलग विभाग किए हैं, तो उसमें कुछ भागों तक, संख्यात भाग तक, निद्रा और प्रचला, ये दो प्रकार की जो दुर्बल निद्राएं रहती है, महानिद्रा नहीं होती, सामान्य निद्रा होती है निद्रा और प्रचला। प्रचला में क्या होता है कि बैठे बैठे ऐसे हिल जाते हैं, थोड़ी सी झपकी आ जाती है, और निद्रा में हल्की सी नींद आ जाती है, ऐसे करो तो उठ जाएगा, हाँ क्या, अच्छा उठ जाता है, अलर्ट हो जाता है। तो इनका बंध आठवें गुण स्थान के संख्यात भाग तक होता है, फिर उसके बाद संख्यात भागों तक 30 प्रकृतियों का बंध होता है। तो उन 30 प्रकृतियों के नाम अभी अपन ने पढ़े, देवगति, पंचेंद्री, जाति, वैकृक, आहारक, तेजस, कारमण, ये चार शरीर, समचतुरस्र संस्थान, वैकृक, आहारक, शरीर अंगोपांग, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, देवगति, प्रायोग्यानुपूर्वी, फिर अगुरु लघु, अनुपूर्वी भी बोलते हैं, अनुपूर्वीय भी बोलते हैं, दोनों नाम है, अगुरु लघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्त विहायोगति, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक शरीर, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, तीर्थंकर नाम की प्रकृतियां वहां तक के बनती हैं। और फिर अंतिम समय में चार प्रकृतियां बनती है आठवें स्थान में, क्रम से छूटती जाती है हास्य रति भय जुगुप्सा। अब नवम गुण स्थान की बात आती है, अनिवृत्ति बादर सांप्राय सांप्रायस्य आदि समयाद आरभ्य संख्येषु भागेषु, पहले समय से लेकर संख्यात भाग कर दो उसके नवम गुण स्थान के वहां तक, पुंवेद क्रोध संज्वलनौ बध्येते, पुरुषवेद और संज्वलन क्रोध इनका बंद होता है। तत ऊर्ध्वम शेषेषु संख्येषु भागेषु, फिर उससे ऊपर जो बचे हुए संख्यात भाग है नवम गुणस्थान के, उनमें उन भागों में मान संज्वलन माया संज्वलनौ बंधम उपगच्छत, मान और माया संज्वलन बंध को प्राप्त होते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि उसके पहले भी बंध तो सभी का हो रहा था जो जो ऊपर बची थी प्रकृतियां, लेकिन पुरुषवेद और क्रोध संज्वलन का यहां तक बंद हुआ, उसके ऊपर बंद रुक गया, संवर हो गया, और उसके ऊपर वाला जो हिस्सा था उसमें मान संज्वलन और माया संज्वलन का बंद हो रहा था। और तस्सेव चरम समय, और उसी नवम गुण स्थान के अंतिम समय में लोभ संज्वलनो बंधमेति, संज्वलन लोभ बंध को प्राप्त होता है। ता एताः प्रकृतयो मध्यम कषाय आश्रवास, ये जो प्रकृतियां अभी गिनी थी अपन ने, एक वेद और चार कषाय, ये पांच प्रकृतियां, ये मध्यम कषाय से आश्रवित होने वाली प्रकृतियां हैं। तदभावे, मध्यम कषाय का अभाव हो जाएगा, नवम गुण स्थान तक मध्यम कषाय थी चली गई, उसके बाद निर्दिष्टस्य भागस्य उपरिष्टात, जो निर्दिष्ट भाग थे पुरुषवेद और क्रोध संज्वलन का भाग था एक, फिर माया संज्वलन और मान संज्वलन का एक भाग था, फिर आखिरी भाग जो था वो लोभ संज्वलन का था, ऐसे तीन भाग किए थे। तो अपने अपने भाग के ऊपर उनका संवर हो जाता है जो उस भाग में चल रहे थे। उपरिष्टात संवर मापनु बनती, संवर को प्राप्त हो जाती हैं वो प्रकृतियां। और उसके बाद दशम गुणस्थान आया, दशम गुणस्थान में मंद है संज्वलन। दशम गुणस्थान में क्या है, पंचानाम ज्ञानावरणानाम चतुर्णाम दर्शनावरणानाम यश कीर्ते रुच्चैर गोत्रस्य पंचानाम अंतरायाणां च मंद कषाय आश्रवाणाम सूक्ष्म सांप्रायो बंधक। 14 प्रकृतियों के साथ और भी दो प्रकृतियों के नाम लिखे हैं। पांच ज्ञानावरण का बंध होता है दसवें गुणस्थान में, चार दर्शनावरण का बंध होता है, चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शनावरण अवधि दर्शनावरण और केवल दर्शनावरण, फिर यश कीर्ति का बंध होता है, उच्च गोत्र का बंध होता है और पांच अंतरायों का बंध होता है। ऐसे 16 प्रकृतियों के नाम लिखे हैं, यद्यपि साता का भी बंध होता है, पर साता का चूंकि ऊपर भी चालू रहता है इसलिए यहाँ अलग से नहीं लिखा, यहाँ केवल वही लिख रहे हैं जो वहीं तक होते हैं, उसके बाद समाप्त हो जाते हैं। तो इस तरह दशम गुण स्थान वाले उसके बंधक होते हैं। तद अभावाद उत्तरत्र तेषां संवर है, और वो मंद कषाय का अभाव हो जाने के कारण ऊपर यानी 11वें आदि गुणस्थानों में इन 16 प्रकृतियों का संवर हो जाता है। तो कितनी प्रकृतियों का संवर हुआ कुल मिलाकर, छठे गुणस्थान तक 55 प्रकृतियों का संवर था, सातवें में 6 और जुड़ गई है ना, तो 61 प्रकृतियों का संवर हुआ, फिर आठवें में एक आयु का भी संवर हो गया, ठीक है 62 हो गया, फिर आठवें गुणस्थान में क्रम से सबसे पहले निद्रा प्रज्वला, फिर 30 प्रकृतियां और उसके बाद अंत में 4 प्रकृतियां थी मोहनी संबंधी, भय जुगुप्सा हास्य रति, तो ये 36 प्रकृतियां और ऐड हो गई 62 में, 62 + 36 तो 98 प्रकृतियों का संवर आठवें गुणस्थान में हुआ। और नवम गुणस्थान में पुरुष वेद का संवर, फिर क्रोध मान माया लोभ, इन चारों संज्वलन कषायों का संवर हो गया, तो पांच प्रकृतियां और ऐड हो गई। तो 98 में पांच जोड़ो तो 103 हो गई, तो 103 प्रकृतियों का संवर दशम गुण स्थान तक हो जाता है। और एक जो साता वेदनी बचती है, फिर इनके जो ये पिंड प्रकृतियां, फिर अगर उनमें से और विभाग करेंगे ना, तो पूरे 148 की संख्या विभाग करने पर आती है। अभी सामान्य रूप से वो कर रहे हैं विभाजन, पर बारीक विभाजन करते हैं तो 148 प्रकृतियां होती है। तो अभी इतनी प्रकृतियों का संवर हुआ है। अभी क्या है कि अपन ने कुछ प्रकृतियों को इसमें गिना नहीं है, लेकिन यहां पर मोटे रूप से इतना संवर निश्चित बताया है। केवलेन योगेन सद्वेद्यस्य उपशांत कषाय क्षीण कषाय सयोगानां बंधु भवति। और मात्र योग अब ऊपर शेष रह जाता है, कषाय समाप्त हो गई। सबसे पहले मिथ्यात्व समाप्त हुआ, अविरति समाप्त हुई, प्रमाद समाप्त हुआ, कषाय समाप्त हुई, और उसके बाद अब योग बचा। मिथ्या दर्शन अविरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतव। तो क्रम से बंध के हेतु समाप्त होते जाते हैं। अब अकेला योग बचता है, तो योग से साता वेदनी का आश्रय होता है ऊपर। असाता का आश्रय कहाँ तक होता है? छठे गुणस्थान तक। प्रमाद से बताया था ना, असाता वेदनी की छह प्रकृतियां थी। देखो, प्रमाद से जुड़ी हुई छह प्रकृतियां थी, उसमें असाता वेदनी थी। तो असाता का बंध और असाता की उदीर्णा छठे गुणस्थान तक ही होती है, उसके ऊपर नहीं। उदीर्णा भी एक प्रक्रिया होती है। तो इस तरह तदभावाद अयोग केवलिनस्तस्य संवरो भवति। उसका अभाव जाने से अयोग केवली भगवान में 14वें गुणस्थान में उसका भी संवर हो जाता है। यानी पूरी एक भी कर्म प्रकृति अयोग केवली भगवान, मतलब चौथे शुक्ल ध्यान में एक भी कर्म प्रकृति का आश्रय नहीं होता। टोटल संवर। क्या अभी तो सबकी बात करना, पूरे सभी, कोई भी कर्म नहीं आ रहे वहां पर। अब अपन ने देखा ना कि पाप का आश्रय कहां तक के होता है? दशम गुण स्थान तक के होता है। आप सोचो कि ये 14 जो प्रकृतियां हैं, 5 ज्ञानावरण, 4 दर्शनावरण और 5 अंतराय कर्म, ये सब पाप प्रकृतियां हैं। इनका आश्रय दशम गुण स्थान तक होता है। भाव तो जो भी है वो कषाय भाव है, बस मंद कषाय है, उससे बंद होता है, बहुत मामूली बंद होता है। ठीक है, अंतर शेषाणाम अंतर्मूर्त, अंतर्मूर्त स्थिति वाले बंद होता है। नाम गोत्री और अष्टु, नाम और गोत्र कर्म की प्रकृति का जो आश्रव है, यश कीर्ति का 8 मुहूर्त और गोत्र उच्च गोत्र का 8 मुहूर्त का बंद होता है दशम गुण स्थान में। सबसे कम बंद है वो स्थिति बंद है। शीशाणाम अंतर्मूर्त, बाकी सबके अंतर्मूर्त बंद होते हैं। ये सब अपन पढ़ रहे हैं, और फिर कुछ ऐसे भी योगी हैं जो ये कर रहे हैं। 6 महीने 8 समय में 608 जीव ये काम कर लेते हैं। और क्या, नहीं नहीं ये तो पूरा फिक्स है, ये इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बिल्कुल यही क्रम रहता है। क्योंकि कारण के अभाव में वो कार्य समाप्त होना ही होना है। आग नहीं है तो धुआं कहां से होगा? अंतर्मूर्त, तो अंतर्मूर्त में इतना आश्रव तो हो ही जाता है जितना बताया ना। मंद संज्वलन कषाय रहती है, ऐसा बताया। उक्त संवरस, अब संवर तो आपने समझा दिया। तद हेतु प्रतिपादनार्थमाह, अब संवर के कारण बताइए, किन कारणों से संवर होता है? तो आचार्य कहते हैं सगुप्त समिति धर्मानुप्रेक्षा परिशह जय चारित्रयी ही। वह गुप्तियों से, समितियों से, धर्म से, अनुप्रेक्षाओं से, परिशह जय से और चारित्र से संवर होता है। तीन गुप्तियां हैं, पांच समितियां हैं, 10 धर्म है, 12 अनुप्रेक्षा है, 22 परिशह जय है और 5 चारित्र है। ऐसे ही 57 उपायों से संवर होता है। तपसा निर्जराच, अब संवर की बात हो गई तो फिर निर्जरा किससे होती है? बोले तपसा, तप से निर्जरा होती है और च से संवर भी होता है। तप से निर्जरा भी होती है और संवर भी होता है। तो सूत्र का अर्थ यही बनेगा कि तप से संवर और निर्जरा होते हैं। फिर यहां पर प्रश्न आता है ननुच, कोई शंकाकार प्रश्न करता है कि तपोभ्युदयांगम इष्टम, तप को तो बताया है कि तप से सांसारिक सुख प्राप्त होता है, देवेंद्रादि स्थान प्राप्ति हेतु त्वाभ्यपगमात, क्योंकि ये स्वीकार किया गया कि तपस्या करने वाले ही देवों के इंद्र आदिक स्थान को प्राप्त करते हैं, तो तपस्या ही उसका कारण है इंद्रादिक पदों का, ऐसा स्वीकार किया गया है शास्त्रों में। तत् कथम निर्जरांगम स्यादिति, तो वो निर्जरा का हिस्सा कैसे हो सकता है तप, ऐसी शंका की। तो आचार्य उत्तर देते हैं नैष दोष, ऐसा नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो, ये दोष नहीं है, क्योंकि एकस्यानेक कार्य दर्शनात् अग्निवत, एक कारण से अनेक कार्य दिखाई देते हैं अग्नि के समान। यथा जैसे अग्निरेकोपी, अकेली अग्नि होकर, अकेली होकर के भी अग्नि विक्लेदन भस्मांगारादि प्रयोजन उपलब्धते, अग्नि जो होती है वो विक्लेदन अर्थात पकाती है भोजन को, यानी चावल के दाने को भात बना देती है अग्नि, ये एक अग्नि का कार्य है। और अग्नि का और क्या कार्य है? वो जिस ईंधन को आत्मसात करके भस्म करती है उसको राख बना देती है, तो राख बनाना भी अग्नि का कार्य है। और अंगार, अंगार उत्पन्न करना भी, कोयला बनाना भी अग्नि का ही काम है, अग्नि से ही कोयले बनते हैं, लकड़ी जल रही है और पानी डाल दो तो कोयला बन जाता है। तो उसी प्रकार तप को भी इन सब का कारण मानने में कोई आपत्ति नहीं है। तप से देव का वैभव, देवों का वैभव भी मिल जाता है, तप से कर्मों का क्षय भी हो जाता है, निर्जरा भी होती है, तो इसमें क्या विरोध की बात है? फिर गुप्ति का वर्णन करते हुए कहते हैं सम्यक योग निग्रह गुप्ति ही, मन वचन काय का जो उद्यम है उसकी जो प्रवृत्ति है वो योग है, तो उसमें स्वेच्छा प्रवृत्ति को रोक लेने का नाम निग्रह है। मनमानी प्रवृत्ति मन वचन काय की न हो उसका नाम गुप्ति है, और उद्देश्य उसका गलत न हो कि ऐसा करने से कोई मुझे, मेरा स्वार्थ सिद्ध होगा, उस उद्देश्य से मन वचन काय को रोकने का नाम गुप्ति नहीं है, निस्वार्थ भाव से कर्म निर्जरा के लिए करते हैं तो गुप्ति है, इसलिए उसमें सम्यक योग निग्रह लिखा। योग निग्रह गुप्ति नहीं कह रहे, सम्यक योग निग्रह। तो संक्लेश रहित होती है गुप्ति, तो गुप्ति से उतना योग निरोध होने के कारण तत्संबंधी कर्म का आश्रव नहीं होता, तो संवर हो जाता है। उसके तीन भेद हैं, काय गुप्ति, वाक गुप्ति और मनोगुप्ति। ईर्याभाषैषणा दान निक्षेप उत्सर्गाः समितयः। फिर ये पांच समितियां हैं, ईर्या समिति, चार हाथ देख के चलना, भाषा समिति, इसकी चर्चा हुई है, हितमित प्रिय वचन बोलना, आदान ऐषणा समिति, निर्दोष आहार लेना, और आदान निक्षेपण समिति, उठाते रखते समय पिच्छिका से परिमार्जन करके देख कर रखना लेना, और उत्सर्ग समिति, मलमूत्र विसर्जित करते समय निर्जंतुक स्थान पर प्राणियों को पीड़ा न पहुंचे वहां पर ये कार्य करना समिति है। फिर दश धर्म है, उत्तम क्षमा मार्दवार्जव शौच सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्मः। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन और उत्तम ब्रह्मचर्य, ये 10 धर्म एक वचन है, एक ही धर्म है ये 10। किमर्थम इदम उच्यते, ये सूत्र क्यों कहा जा रहा है? तो आचार्य कहते हैं आद्यम प्रवृत्ति निग्रहार्थम। पहला सूत्र जो था गुप्तिका, प्रवृत्ति रोकने के लिए था। तत्रा समर्थानां प्रवृत्ति उपाय प्रदर्शनार्थम द्वितीयम, और जो उसमें असमर्थ थे गुप्ति में उनके लिए प्रवृत्ति का उपाय प्रदर्शित करने के लिए समिति बताई थी। इदम पुनर दशविधम, दशविध धर्माख्यानम, यहां पर जो 10 प्रकार के धर्म का कथन है वह समितिषु प्रवर्तमानस्य प्रमाद परिहारार्थम वेदितव्यम। समितियों में प्रवृत्ति करने वाले साधु के लिए प्रमाद का परिहार करने हेतु ये जानना दश धर्म। तो ये बात अपन बार बार कहते आ रहे हैं कि ये दश धर्म निर्विकल्प अवस्था के नहीं हैं, किंतु समिति में प्रवृत्ति करने वाले साधु के द्वारा प्रमाद न हो उसके लिए ये दश धर्म है। फिर क्षमा आदिक दश धर्मों का यहाँ पर विवेचन है। क्षमा के बारे में क्या लिखा है? शरीरस्थित हेतु मार्गणार्थम, शरीरस्थिति हेतु मार्गणार्थम परकुलान्युपगच्छतो भिक्षुर दुष्ट जनाक्रोश प्रहसनावज्ञा ताड़न शरीर व्यापादनादीनाम सन्निधाने कालुष्यानुत्पत्ति ही क्षमा। बोले आहार के लिए निकले हुए जो साधु हैं, दूसरों के घर जाकर भिक्षा ग्रहण करने वाले, उनको दुष्ट लोग रास्ते में उल्टा सीधा बोलते हैं, हंसते हैं, हंसी उड़ाते हैं, उनका अनादर करते हैं, कभी मारपीट करते हैं, कभी जान से मारने तक तैयार हो जाते हैं, तो ऐसी स्थितियां बनने पर भी कालुष्यानुत्पत्ति, उनके अंदर कलुषता की उत्पत्ति न होना क्षमा है। जात्यादि मदावेशाद अभिमाना भावो मार्दव मान निर्हरणम, जाति आदि के मद के आवेश से जो उत्पन्न होने वाला अभिमान है उसका अभाव होना मार्दव है, होता ही नहीं घमंड उनमें, ये सब उनके पास गुण होते हुए भी घमंड नहीं करते, मान निर्हरण, मान को दूर कर देते। योगस्या वक्रता आर्जवम, मन वचन काय की अकुटिलता को आर्जव कहते हैं। प्रकर्ष प्राप्त लोभान निवृत्ति ही शौचम, लोभ को खूब अच्छे ढंग से दूर कर देने का नाम शौच है। सत्सु प्रशस्तेषु जनेषु साधु वचनम सत्यमित्युच्यते, प्रशस्त लोगों के बीच, साधु जनों के बीच जो वचन बोले जाते हैं वो सत्य धर्म है। तो फिर शंका की ननु चैतद् भाषा समिताव अंतर्भवति, तो फिर इनको तो इसको तो भाषा समिति में ले लेना था, प्रश्न किया। तो आचार्य उत्तर देते हैं नैष दोष, ऐसा नहीं है, ये दोष नहीं है। समितौ प्रवर्तमानो मुनि ही, समिति में प्रवृत्ति करने वाले जो मुनि हैं वे साधुष्वसाधुषुच, साधुओं सज्जनों के प्रति और असज्जनों के प्रति भी भाषा व्यवहारम कुर्वन, भाषा की प्रवृत्ति करते हुए हितम मितंच ब्रूयात, हितकारी और सीमित वचन बोलते हैं, बोल सकते हैं। अन्यथा रागाद अनर्थ दंड दोष, अन्यथा क्या होगा, ज्यादा बोलेंगे तो राग के कारण अनर्थ दंड का दोष लगेगा, स्यात इति। वाक् समिति रित्यर्थ, इसको भाषा समिति कहते हैं। यह पुनः यह सत्य धर्म में क्या है, संत प्रव्रजिता, संत जन जो है दीक्षित है, तद भक्तावा अथवा उनके भक्त हैं, तेषु साधु सत्यम, उनमें जो उचित सत्य वचन बोला जाता है, ज्ञान चारित्र शिक्षणादिषु बहुवपी कर्तव्यम, ज्ञान के बारे में, चारित्र के बारे में, और कोई सीख देने के लिए या ज्ञान और चारित्र संबंधी शिक्षण देने आदि के लिए अधिक भी बोलना पड़ जाए तो इत्यनुज्ञायते, उसकी अनुमति है। सत्य धर्म में सीमित बोलने का बंधन नहीं है, अधिक बोला जा सकता है धर्मोपबृंखणार्थम, क्योंकि उससे धर्म की वृद्धि होती है। समितिषु वर्तमानस्य, फिर बोलते हैं कि समितियों में वर्तने वाले जो साधु हैं उनके लिए प्राणींद्रिय परिहार संयम, छह प्रकार के जो प्राणी हैं, पांच स्थावर और एक त्रस, और पांच इंद्रिय और मन, इनकी अनर्गल प्रवृत्ति का परिहार करना संयम है, यानी इनको नियंत्रण में रखना संयम है, यानी जीवों की रक्षा करना और इंद्रिय मन को काबू में रखना। कर्म क्षयार्थम तप्यत इति तपः, कर्म के क्षय के लिए जिससे तपा जाता है उसको तप कहते हैं। तद उत्तरत्र वक्षमाणं द्वादश विकल्पम अवसेयम, वो आगे बताएंगे उसके 12 भेद, वहां से जान लेना। फिर संयतस्य योग्यम ज्ञानादि दानम त्याग, संयत के योग्य ज्ञान आदिक देना त्याग धर्म है। क्योंकि वो साधु जो हैं, जो दश धर्म का पालन कर रहे हैं, वो संयत है, असंयत नहीं है। तो संयत की भूमिका के योग्य वो क्या दे सकते हैं, संयत क्या देंगे, तो बोलते हैं कि ज्ञान आदि। त्याग धर्म में वो ज्ञानादि दानम त्याग, ज्ञान आदि का दान करते हैं, उसी का नाम त्याग है। अर्थात साधु जो होते हैं वो ज्ञान प्रदान करते हैं, आदि शब्द से और भी कई प्रकार की सुंदर सुंदर शिक्षाएं प्रदान करते हैं, वो सब त्याग धर्म के अंतर्गत आता है। उपातेष्वपि शरीरादिषु संस्कार आपोहाय ममेदमित्यभिसंधि निवृत्ति राकिंचन्यम, जो उपात्य ने गर्भ से ही अपन ने स्वीकार करके रखा है, ऐसे शरीर आदि के प्रति, शरीर है, वचन है, ये सब अपने पास शुरू से हैं, तो इनके प्रति संस्कार आप है, इनकी सजावट को छोड़ने के लिए एक अनुराग रहता है शरीर की सजावट का, भावो भवांतरों के संस्कार है जीव को, कि शरीर को थोड़ा टिप टॉप रखने का आदि ही रहता है संसारी प्राणी। तो आचार्य कहते हैं कि उसको छोड़ने के लिए ममेदमित्यभिसंधि निवृत्ति, ये मेरा है इस अभिप्राय को छोड़ देना, आकिंचन्यम, आकिंचन्य ये मेरा नहीं है, इसका नाम आकिंचन्य है। नास्य किंचनास्ति त्यकिंचन, जिसके पास कुछ नहीं होता उसको अकिंचन कहते हैं। तस्य भावः कर्म वा आकिंचन्यम, और उसके अंदर जो भाव होता है, उसकी जो प्रवृत्ति होती है, परिणति होती है, उसको आकिंचन्य कहते हैं। इसके बाद अनुभूतांगना स्मरण कथाश्रवण स्त्री संसक्त शयनासनादि वर्जनात् ब्रह्मचर्यम परिपूर्णम अवतिष्ठते, जिनका किसी काल में कभी संपर्क किया है, सेवन किया है, ऐसी स्त्रियों का स्मरण, उनकी चर्चा को सुनना, और उनके द्वारा संसक्त का अर्थ होता राग पूर्वक सेवित किसी बिस्तर अथवा आसन का त्याग करना, आदि शब्द से और भी कोई वस्तु हो सकती है जो वो उनके अंदर राग के काल में, उस तीव्र प्रीति के काल में कोई वस्तु उनके पास में रही हो, तो उसका त्याग करने का नाम ब्रह्मचर्य धर्म है। तो ऐसा करने से ब्रह्मचर्य परिपूर्णम अवतिष्ठते, ब्रह्मचर्य पूर्ण रूप से अवस्थित हो जाता है, स्थिर हो जाता है। और क्या है ब्रह्मचर्य में? बोले स्वतंत्र वृत्ति निवृत्तिर निवृत्त्यर्थो वा गुरुकुल वासो ब्रह्मचर्यम। अपनी स्वतंत्र वृत्ति का अर्थ होता है अपने जैसा मन में आया वैसा करने की जो आदत होती है, उससे छुटकारा पाने के लिए गुरुओं के सानिध्य में रहने का नाम भी ब्रह्मचर्य है। फिर दृष्ट प्रयोजन परिवर्जनार्थम उत्तम विशेषणम, लौकिक स्वार्थ छोड़ने के लिए इन दश धर्मों से उत्तम शब्द को जोड़ा गया है। सभी दसों के साथ में उत्तम 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 जुड़ा हुआ है ना, तो लौकिक स्वार्थ को छोड़ने की अपेक्षा है। तान्येव भाव्यमानानि धर्म व्यपदेश भांजी स्वगुण प्रतिपक्ष दोष सद्भावना प्रणिहितानि संवर कारणानि भवन्ति। ये दश धर्म भली भांति आचरण में लाने से क्या होता है, अपने गुणों से विरुद्ध जो दोष हैं उनको रोकने में सहायक हो जाते हैं। क्षमा से क्रोध रुक जाता है, मार्दव से मान रुक जाता है, आर्जव से लोभ माया रुक जाती है। जो जो प्रतिपक्षी हैं, शौच से लोभ रुकता है, संयम से हिंसा रुक जाती है, और तप से जो आकांक्षाएं हैं वो रुक जाती है, भय रुक जाता है, भय समाप्त हो जाता है तप से, और फिर त्याग से अपन दे देते हैं, जो अपने पास ज्ञान है वो बांट देते हैं। तो उसमें क्या हो जाता है, बांटने से जो एक छुपाने वाली स्थिति रहती है वो चली जाती है। अपने पास जो ज्ञान है वो बांट दिया, तो जो पात्र है उनको दे देना। त्याग धर्म में ही होता है। अकिंचन्य में अपने शरीर को सजाने वाली भावना रुक जाती है, और ब्रह्मचर्य से जो तद विषयक राग है वो रुक जाता है। तो ये संवर बन जाते हैं, संवर के कारण बन जाते हैं, और इनसे समितियां निर्मल हो जाती है। दश धर्मों से पांच समितियां शुद्ध होती है। इसके बाद अनुप्रेक्षाओं का वर्णन आगामी सूत्र में आएगा। जैनम जयतु शासनम।